इशिका को हासिल करने के लिए नक्श हर हद पार कर रहा था। उसने रोहन की टीम के सामने ये शर्त रखती थी कि अगर उन्हें डॉक्टर मर्चेंट का गाइडेंस चाहिए तो उन्हें इशिका को उसकी टीम में भेजना होगा। नक्श ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसने डॉक्टर मर्चेंट को खरीद लिया हो। इशिका की असली पहचान से अनजान नक्श लगातार डॉक्टर मर्चेंट के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। इशिका को गुस्सा आने लगा। वो नक्श के पास गई और लगभग अपनी सच्चाई बताने ही वाली थी। मैं ही हूँ, इशिका बुही। वो अपनी बात पूरी करके ये कह पाती कि मैं ही हूँ डॉक्टर मर्चेंट, उतने में लक्ष्य उनके बीच में आया और तेज आवाज में बोला, मुझे रोहन सर के किसी भी डिसीजन से प्रॉब्लम नहीं है। हमारी टीम डेडिकेट होकर काम करती है तो हमें नहीं लगता कि हमें इशिका को आपको सौंपना चाहिए। लक्ष्य के बाद पूरी टीम एक सुर में बोली, हाँ, हमें भी रोहन सर के डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब उनके हिसाब से ही काम करेंगे। इशिका ने उन सबके चेहरों की तरफ देखा जो आंखों ही आंखों में उसका साथ देने का वादा कर रहे थे। इशिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। थोड़ी देर पहले वो सभी इशिका को भला बुरा कह रहे थे, उसके काम न करने पर सुना रहे थे, लेकिन आज जरूरत पड़ने पर वो इशिका के साथ थे। लक्ष्य इशिका के पास खड़ा था। उसने इशिका की तरफ देखकर सख्ती से कहा, तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत नहीं है, रोहन सर बहुत अच्छे हैं, वो हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। इशिका ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। अब नक्श का चेहरा देखने लायक था। खुलेआम उसकी इंसल्ट हो गई थी। इस तरह नक्श की इंसल्ट करना उन सब लोगों के लिए आसान नहीं था। वो राजवंश एम्पायर में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर आ गया था और साथ ही वो उस खानदान का, इस जनरेशन का इकलौता लड़का था। नक्श से दुश्मनी लेकर वो अपनी मुसीबतें बढ़ा सकते थे, फिर भी उन्होंने इशिका का साथ दिया। नक्श ने अपने इमोशंस को काबू किया और फिर खुद को सख्त करके कहा, लगता है आप सबके ऊपर काम का इतना प्रेशर नहीं है जो आप लोग डॉक्टर मर्चेंट की हेल्प के बिना ही सब कुछ कर सकते हैं। ग्रेट, ये तो अच्छी बात है, मुझे अब तक पता नहीं था। सुनिए सब, दोनों टीम जिस खास न्यू एनर्जी के रूट प्रोजेक्ट पर जो काम कर रही है, अब उस पर काम करने का टाइम आ गया है। उन सबको यही लगा था कि नक्श अब कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे उन पर मुसीबत आ पड़ेगी। एक बड़े प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया था जो टीम ए और टीम बी को मिला था। इस काम को जल्दी करने का कोई दबाव नहीं था क्योंकि इससे जुड़ा हुआ काम काफ़ी मुश्किल था। नक्श ने अपना अगला दांव खेलते हुए कहा, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सभी इश्यूज मुझे एक हफ्ते के अंदर सॉल्व चाहिए। हर कोई हैरानी से नक्श की तरफ देखने लगा। रोहन उस काम को कर सकता था, लेकिन उसे करने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए था। नक्श ने अपना बदला लेते हुए उन्हें सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया था। रोहन गुस्से में उस पर चिल्लाकर बोला, ये क्या बचपना है, तुम अच्छे से जानते हो कि उसे एक हफ्ते में कोई नहीं कर सकता। ऐसे कैसे नहीं कर सकते, डॉक्टर मर्चेंट होते तो उसे 3 दिन में ही खत्म कर देते, लेकिन तुम्हें उनकी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो बहुत महान हो, तो एक हफ्ते का टाइम भी ज्यादा है, नक्श ने जवाब दिया। नक्श ने इतना ही कहा और फिर वहां से जाने लगा। इशिका को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इशिका नक्श के पीछे गई और बोली, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। नक्श को लगा कि इशिका ने हार मान ली है, इसलिए उसने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। वो दोनों बाहर पैसेज में आ चुके थे जहाँ आसपास कोई नहीं था। बाहर आते ही नक्श ने इशिका की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, पहले ही हाँ कह देती तो उन लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो इशिका, आ जाओ मेरे पास, शादी नहीं कर सकता पर आई प्रॉमिस आयशा से ज्यादा प्यार दूंगा। इशिका ने सख्त अंदाज से नक्श की तरफ देखा और फिर बोली, चलो एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त, नक्श हैरानी से पूछा। अचानक उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी जब उसने इशिका से शर्त लगाई थी। वो उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था जबकि इशिका सिर्फ अंडर ग्रेजुएट के सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। इशिका को इम्प्रेस करने के लिए नक्श ने उससे शर्त रखी थी कि कौन अपनी थीसिस को पहले पूरा करता है। वो कॉलेज में नक्श का आखिरी साल था, इसलिए उसने ये शर्त रखी थी कि जो भी इस थीसिस को पहले पूरा करेगा वो विनर की सारी बात मानेगा। नक्श इशिका को प्रपोज करने वाला था, वो ना नहीं कर पाए इसलिए नक्श ने वो शर्त रखी थी, लेकिन इशिका की नाजायज औलाद होने की बात पता चलने के बाद उसने कभी उसे प्रपोज किया ही नहीं था। नक्श ने उस वक्त बहुत मेहनत की थी और कई रातों तक जागकर अपनी थीसिस को पूरा किया था, पर अफसोस उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। इशिका के अचानक शर्त की बात कहने पर नक्श के दिमाग में वो सब बातें ताज़ा हो गई थी। इशिका के गुस्सा होने की वजह से नक्श ने भौहें उठाकर कहा, और मैं तुम जैसी लड़की से कोई भी शर्त क्यों लगाऊं? क्यों, तुम्हें फिर से हारने से डरते हो क्या? इशिका ने सिर हिलाकर कहा। फिर से, मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? नक्श ने हैरानी से पूछा। इशिका ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल निकालकर एक ईमेल उसे दिखाया। नक्श को अब पता चला था कि इशिका ने पिछली बार अपनी थीसिस अगले दिन ही जमा करवा दी थी। नक्श को एहसास हुआ कि वो कभी इशिका को टक्कर नहीं दे पाएगा, फिर भी उसका मेल ईगो उसे पीछे हटने के लिए नहीं कह रहा था। उसने भौहें उठाकर पूछा, शर्त क्या है? इशिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अगर टीम 1 एक हफ्ते से पहले उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सबमिट कर देती है और डॉक्टर मर्चेंट तुम्हारी हेल्प नहीं करते हैं तो तुम कभी हमारी टीम के काम में दखलंदाजी नहीं करोगे। इशिका भी डॉक्टर मर्चेंट थी तो वो इस बात का अच्छे से फायदा उठा सकती थी। इस वक्त उसे अपनी चिंता नहीं थी, उसे उन लोगों की चिंता थी जिन्होंने बिना सोचे समझे उसका साथ दिया था। इशिका की शर्त सुनकर नक्श हंस पड़ा। वो बोला, ठीक है, मंजूर है, लेकिन अगर तुम लोगों ने एक हफ्ते में काम नहीं किया और डॉक्टर मर्चेंट ने मेरी हेल्प कर दी तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। मैं तुमसे कुछ भी करवा सकता हूँ इशिका। मंजूर है, इशिका ने सख्ती से जवाब दिया। इशिका की बेवकूफ़ी देखकर नक्श को हंसी आ रही थी। वो इशिका को हासिल करना चाहता था और ये मौका उसे मिल गया था। नक्श ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है इशिका, क्या तुम डॉक्टर मर्चेंट की स्पीड से मैच कर पाओगी? ठीक है, तुम इंटेलिजेंट हो तो अच्छा कर लेती हो, पर डॉक्टर मर्चेंट से तो नहीं जीत सकती ना। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है, डॉक्टर मर्चेंट तुम्हारी हेल्प करेंगे? क्या उन्होंने तुम्हें किसी तरह का प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या राजवंश एम्पायर के लिए काम करेंगे? इशिका ने सिर हिलाकर कहा। नक्श उसकी बात सुनकर चौंक गया था। वो आयशा के भरोसे था, आयशा ने उससे झूठ बोला था, ये बात इशिका अच्छे से जानती थी। नक्श कुछ कहता उससे पहले इशिका वापस अपने वर्क स्टेशन पर लौट आई थी। वहां आते ही उसने अपनी टीम मेंबर्स को आपस में बात करते हुए पाया। इशिका को देखते ही वो सब उसका मूड सही करने लगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसकी वजह से उन पर प्रॉब्लम आ गई थी। सानिया इशिका के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डोंट वरी इशिका, हम डॉक्टर मर्चेंट से बाद में मिल लेंगे। प्रोजेक्ट थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन साथ काम करेंगे तो हो जाएगा, तुम प्लीज टेंशन मत लेना। सब उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और कौन से डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के बाद में उनका दिव्य ज्ञान हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा? मिलना तो कभी भी हो सकता है, वो यहाँ टीम टू की हेल्प करने आएंगे, तब हम उनसे मिल लेंगे, दूसरी लड़की ने कहा। और नक्श हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो तो है ही चलनखोर आदमी, सानिया ने कहा।
उन सब की कोशिशें देखकर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी वहां रोहन आया। उन लोगों को बातें करते देखकर वो तेज आवाज में बोला, हम लोगों को बहुत मुश्किल काम मिला है और तुम लोग यहां बैठकर बातें बना रहे हो। हमें काम पूरा करना है किसी भी हाल में, तुम्हारे बातें बनाने से काम पूरा नहीं हो जाएगा। चुपचाप मीटिंग रूम में आओ, मुझे तुम सब लोगों को काम डिवाइड करके देना है। ओके बॉस, सब एक साथ बोले। इशिका ने देखा कि सभी रोहन के कहते ही जल्दी जल्दी चलते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में जाने लगे। इशिका धीरे धीरे उनके पीछे आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे रोहन को उसी के आने का इंतजार था। जब तक इशिका अंदर नहीं आई, उसने मीटिंग शुरू तक नहीं की थी। रोहन ने जिस हिसाब से उनको काम दिया था, इशिका को यही लगा था कि उन्हें ओवरटाइम करना पड़ेगा। लेकिन शाम होते होते सभी अपना डेस्क क्लियर करके घर जाने की तैयारी करने लगे। इशिका भी फिर वहां नहीं रुकी, वो पार्किंग एरिया में जा रही थी। इशिका ने इस बात को नोटिस नहीं किया था कि वो लोग थोड़े टाइम के ब्रेक के लिए गए हैं, ना कि घर गए थे। वो एक ब्रेक के बाद वापस काम पर वापस लौट चुके थे। वहीं पार्किंग एरिया में अभिमन्यु अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। पृथ्वी ने उससे पूछा, चलें सर? कोई जल्दी नहीं है, जब मैं कहूंगा तब चलना, अभिमन्यु ने शांति से जवाब दिया। उसके हाथ में अभी भी वही किताब थी जो इशिका ने अलग की थी। पृथ्वी उससे ये पूछना चाहता था कि वो किसका इंतजार कर रहा था, तभी उसकी नज़र सामने से आ रही इशिका पर पड़ी। इशिका गाड़ी के अंदर जाकर चुपचाप बैठ गई थी। गाड़ी स्टार्ट करो पृथ्वी, वी आर गेटिंग लेट, अभिमन्यु बोला। इसी के साथ पृथ्वी समझ गया था कि अभिमन्यु इशिका के आने का इंतजार कर रहा था। गाड़ी में बैठते ही इशिका की नज़र अभिमन्यु के हाथ में पकड़ी हुई किताब पर गई। वो समझ गई थी कि यह वही बुक है और अभिमन्यु ने ही उठाई थी। इशिका बुक लाने अभिमन्यु के पास जाना चाहती थी, पर काम ज्यादा होने की वजह से उसने इसे बाद में लाने का सोचा था। पूरे रास्ते दोनों ने बिल्कुल बात नहीं की और वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जैसे ही वो थर्ड फ्लोर पर वीआईपी वार्ड में पहुंचे, उन्हें वसुधा के कमरे के अंदर से मालविका की आवाज सुनाई दी। मालविका ने दरवाजे के पास खड़े होकर जबरदस्ती हंसते हुए कहा, मिसेज राजवंश, अब आप कैसी हैं? मैं यहाँ खास आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपको देखकर खुशी हुई, उम्मीद है आप भी मुझे देखकर खुश हुई होंगी। मालविका अपनी तरफ से अच्छी खासी बटरिंग कर रही थी। उनसे अलग वसुधा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर धक्के मारकर तुम्हें इस अस्पताल से बाहर निकाल दूंगी। मालविका वहां आयशा के लिए आई थी, लेकिन वसुधा के तेवर देखकर वो इशिका का सहारा लेने लगी। मालविका जानती थी कि वसुधा इशिका को पसंद करती है, तो वो बोली, अरे मिसेज राजवंश, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं इशिका की माँ हूँ। इशिका आपको अच्छी लगती है ना, मेरी बेटी है वो, आप उसकी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव करेंगी क्या? तुम उसकी माँ नहीं हो, उसकी माँ राधिका सिंघानिया है, कहा ना, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वसुधा ने सख्ती से कहा। उनकी बातें सुनकर मालविका बुरी तरह डर गई थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। उसने जल्दी से पूछा, आपको कैसे पता? मालविका बुरी तरह घबरा गई थी। उसने दोनों लड़कियों को बदला था, ये बात सिर्फ उसे और उसके भाई आशीष को ही पता थी। वो बूढ़ी औरत जिसे ठीक से कुछ याद भी नहीं रहता था, वो इतना कॉन्फिडेंट होकर सच बोल रही थी। मुझे यहाँ से जाना होगा, क्या ये सब कुछ जानती है? इशिका इसके आसपास ही रहती है, कहीं इसने उसे बता दिया तो, मालविका ने मन ही मन कहा। वो जाने के लिए पलटी तो उसे सामने अभिमन्यु और ऋषिका दिखाई दिए। मालविका को अपने यहाँ डर सताने लगा कि कहीं अभिमन्यु और ऋषिका ने उनकी बात सुन तो ना ली है। मालविका वहां से जाने को हुई, तभी वसुधा ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर से बोली, तुम एक बहुत बुरी औरत हो, तुमने मेरी बहू को परेशान किया है, वो तुम्हारी नहीं, राधिका सिंघानिया की बेटी है, मालविका बुरी तरह फंस चुकी थी, वसुधा उसे जाने नहीं दे रही थी। ऊपर से वो जोर जोर से बोल रही थी, अगर पहले अभिमन्यु और ऋषिका ने उनकी बात ना भी सुनी होगी तो अब सुन ली होगी। ये सोचकर ही मालविका के पैरों तले जमीन खिसक रही थी। फिलहाल के लिए इतना ही, अगले पार्ट पर मिलते हैं। एक और बात, अगर आप मुझे पढ़ रहे हो और आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिएगा।